श्रीमद्भागवतम सातवें स्कंद के चौथे अध्याय पर चर्चा है। इसके श्लोक को पढ़ेंगे, कृपया दोहराइए। तस्योग्रदंड संवेग्नाः सर्वे लोकाः सपालकाः अन्यत्र लब्ध शरणाः शरणं ययुरुच अच्युतम् तस्योग्रदंड संविग्नाः सर्वे लोकाः सपालकाः अन्यत्रालब्ध शरणाः शरणं ययुरच्युतम् तस्योग्रदंड संविग्नाः सर्वे लोकाः सपालकाः अन्यत्रालब्ध शरणाः शरणं ययुरच्युतम् तस्य उसकी हिरण्यकश्यपु की उग्रदंड अत्यंत भयावह ताड़ना से संविग्नाः विचलित सर्वे सभी लोकाः सारे लोक सपालकाः अपने प्रधान शासकों सहित अन्यत्र अन्य कहीं अलब्ध न प्राप्त करके शरणाः शरण शरणम शरण के लिए ययुः पास आए अच्युतम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के। अनुवाद और तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। हिरण्यकश्यपु द्वारा दिए गए कठोर दंड से सब के सब, यहां तक के विभिन्न लोकों के शासक भी अत्यधिक त्रस्त थे। वे अत्यंत भयभीत तथा उद्विग्न होकर और अन्य किसी का आश्रय न पा सकने के कारण अंततः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की शरण में आए। तात्पर्य, भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मुनिगण मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का चरम प्रयोजन, समस्त ग्रहों तथा देवताओं का परमेश्वर तथा समस्त जीवों का उपकारी तथा शुभ चिंतक जानकर भौतिक यातनाओं से शांति लाभ करते हैं। भगवान कृष्ण वस्तुतः हरेक के श्रेष्ठ मित्र हैं। विपत्ति या दुख में शुभ चिंतक मित्र की खोज की जाती है और ऐसे ही परम शुभ चिंतक भगवान श्री कृष्ण हैं। अतएव विभिन्न ग्रहों के सारे निवासी अन्य कोई शरण ना पाकर अपने परम मित्र के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने के लिए बाध्य हो गए। यदि हम प्रारंभ से ही परम मित्र की शरण खोजते रहें तो किसी प्रकार के भय का कोई कारण नहीं उठता। कहा गया है कि यदि जल में तैरते हुए कुत्ते की पूंछ पकड़कर कोई व्यक्ति समुद्र पार करना चाहता है तो वह निसंदेह मूर्ख है। इसी प्रकार विपत्ति के समय जो व्यक्ति देवताओं की शरण में जाता है वह मूर्ख है, क्योंकि उसके सारे प्रयास व्यर्थ होंगे। हर परिस्थिति में मनुष्य को चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करे, तब किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामयं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहं श्री गुरौ श्री उत्पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं सागरजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वशास्त्राब्धि पीयूषः सर्ववेदैकसत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिधान्तोदिदादित्या श्रीकृष्णा परिवर्तिता। परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुते। मदेक बंधो मत्संगे मद्गुरो मन्महाधना मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमोस्तुते। असाधु साधु तदाइन अतिनीचोचतः कर हानमुंच कदाचिन्मा प्रेमनारत्कंठयोस्फुरा। हरे कृष्ण। सातवें स्कंद का ये चौथा अध्याय है। तीसरे अध्याय में हम लोग देख चुके हैं कि कैसे हिरण्यकश्यपु ने बहुत कड़ी तपस्या की और उस कड़ी तपस्या के बल पर सारे ब्रह्मांड में उसने अग्नि को फैला दिया। अग्नि के कारण जितने देवता थे वो उस उष्णता को जो हिरण्यकश्यपु के सिर से निकल रही थी अग्नि, तो उस उष्णता को गर्मी को सहन नहीं कर पाए। सभी लोग ब्रह्मा जी के पास गए और फिर ब्रह्मा जी आए हिरण्यकश्यपु के पास। और अध्याय के अंत में पिछले अध्याय के हमने देखा था कि हिरण्यकश्यपु ने वरदान मांगा, मरना नहीं चाहता हूं, आपके बनाए हुए किसी भी सृष्टि से किसी भी प्राणी से मैं मरू नहीं, अंदर नहीं मरू बाहर नहीं मरू, आकाश में नहीं पृथ्वी में नहीं इत्यादि। तो अब जब ये मांग लिया इस अध्याय के प्रारंभ में ये वर्णन किया गया कि कैसे ब्रह्मा जी ने वो वरदान दे दिया और फिर उसके बाद करीब 20 श्लोकों तक पहले वर्णन है कि उस वरदान को पाकर कैसे आतंक मचाया हिरण्यकश्यपु ने सारे ब्रह्मांड में। तो ब्रह्मा जी ने जब ये सुना कि हिरण्यकश्यपु ये चाहते हैं तो उन्होंने कहा कि हिरण्यकश्यपु, क्योंकि वैसे तो ये बहुत कठिन है ये जो वरदान तुम मांग रहे हो, लेकिन क्योंकि तुमने बहुत कड़ी तपस्या की है मैं तुम्हें ये वरदान देता हूं। प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं कि दरअसल ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यपु को चेतावनी दे रहे थे कि ये जो तुम मांग रहे हो इससे केवल तुम्हारा नुकसान होने वाला है, तुम इसको संभाल नहीं पाओगे, इसका फल ठीक नहीं होगा जो भी तुम मांग रहे हो, लेकिन फिर भी क्योंकि तुम्हारी इच्छा है, तुमने तपस्या की है, मैं तुम्हें ये प्रदान करता हूं। देवी देवता जब किसी को वरदान देते हैं तो केवल उसके द्वारा की गई जो भी पूजा इत्यादि है उसके आधार पर दे देते हैं, तपस्या इत्यादि। जैसे ब्रह्मा जी यहां जानते हुए कि ये वरदान देने से इसका नुकसान होगा फिर भी दे रहे हैं। भगवान ऐसे नहीं है, भगवान एक पिता की तरह है, वो अगर देखते हैं कि ये वरदान देने से नुकसान होगा तो वरदान नहीं देते, या वरदान को इस तरह देते हैं कि उसके हृदय से ऐसी भावनाओं को निकाल देते हैं जिससे उसको नुकसान हो। जैसे ध्रुव महाराज, ध्रुव महाराज भगवान के पास गए ये जानने के लिए, ये मांगने के लिए कि मुझे बहुत बड़ा राज्य चाहिए, और भगवान ने वो वरदान देने से पहले उसके हृदय से, उनके हृदय से उस भावना को निकाल दिया, उसके द्वारा भोग करने की भावना को निकाल दिया। कौन सी आवाज है? तो भगवान ने उनके हृदय से उस भावना को ही निकाल दिया और फिर वो वरदान दिया, वरदान दिया लेकिन उस भावना को, उसको उस राज्य के द्वारा भोग करने की भावना को निकाल दिया। इसीलिए प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज ने कुछ नहीं मांगा भगवान से। जब भगवान आए तब उन्होंने केवल इतना ही कहा कि अब तो मैं कृतार्थ हो गया आपको देखकर, स्वामी कृतार्थोस्मि वरम न याचे, कोई वर नहीं चाहिए अभी। लेकिन फिर भी भगवान ने उनको राज्य दिया, बहुत बड़ा राज्य, जो उनकी कामना थी, अपने पिता से भी बड़ा राज्य, अपने पिता के पिता से भी बड़ा राज्य, तो बहुत बड़ा राज्य भगवान ने दिया, लेकिन हृदय से उस भावना को, भोग करने की भावना को निकाल दिया। तो भगवान ये करते हैं, लेकिन यहां ब्रह्मा जी ने ऐसा नहीं किया। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया कि ठीक है तुम मरोगे नहीं, तुम्हें एक छत्र राज्य होगा, कोई तुम्हारा विरोध नहीं कर पाएगा, कोई देवता, कोई असुर, कोई भी तुम्हारा विरोध नहीं कर पाएगा, सारा वरदान दे दिया, लेकिन हृदय से स्वामी बनने की भावना को नहीं निकाला। तो अब प्रभुपाद एक बहुत सुंदर बात लिखते हैं कि कभी कभी वरदान ये श्राप हो जाता है। ऐसा वरदान, ऐसा ऐश्वर्य, ऐसा मान सम्मान या ऐसी शक्ति जो भगवान से हमें अलग कर दे, वो दरअसल श्राप है, वो वरदान नहीं है। तो जब हमें वरदान मिलते हैं तो हमें ये जानना चाहिए कि अगर ऐसा वरदान हमें भगवान के निकट ले जाए तब तो वो वरदान है, अन्यथा वो श्राप है। तो इसीलिए हिरण्यकश्यपु को जो ये मिला वो दरअसल वरदान नहीं, श्राप था, क्योंकि वो उसे हिरण्यकश्यपु की मृत्यु की ओर ले जाएगा या भगवान से दूर उसको ले जाएगा। तो हिरण्यकश्यपु को ये मिल गया। इसलिए ध्यान रखिए कि हर वरदान इस भौतिक जगत में वरदान नहीं होता। कई बार लोग कहते हैं किसी को बहुत सारा धन मिला है उसको भगवान की कृपा है या वरदान है, कोई कहते हैं उसको मान सम्मान मिला वरदान है, कोई कहते हैं कि उसको पद मिला वरदान, जरूरी नहीं है। यही वरदान उसके लिए श्राप हो सकता है क्योंकि वो उसमें पढ़कर, इसीलिए कुंती महारानी कहती है जन्म ऐश्वर्य श्रुतश्री भी एदमान मदह पुमान। व्यक्ति को अगर ये सारी चीजें मिल जाती हैं, अच्छा जन्म मिल जाता है, ऐश्वर्य मिल जाता है, अच्छी बुद्धि मिल जाती है, तो क्या होता है, मदह पुमान, पागल हो जाता है वो, उसके मद में, उसके उसको नशा हो जाता है और इसलिए भगवान से दूर चला जाता है। तो ऐसे हिरण्यकश्यप को ये वरदान दे दिया ब्रह्मा जी ने और फिर ब्रह्मा जी चले गए वापस। और अब हिरण्यकश्यप ने ये जो वरदान मिल गया, अब उसको शक्ति मिल गई, तो अब वो शक्ति लेकर सारे ब्रह्मांड में उसने आतंक मचाना शुरू किया। अभी भी उसके हृदय से इस अध्याय में वर्णन है कि भगवान के विरुद्ध द्वेष कम नहीं हुआ। इतनी तपस्या कर ली, देवताओं के 100 वर्ष अर्थात प्रायः 36,000 वर्ष मान लीजिए इस जगह इस पृथ्वी के, इतनी कड़ी तपस्या करने के बाद भी उसके मन से द्वेष नहीं गया। अब जब उसको शक्ति मिल गई, इतनी तपस्या करके आ गया, तो अब उसके मन में था कि अब छोड़ूंगा नहीं, मैं अब विष्णु को दिखाऊंगा। तो ऐसी तपस्या का क्या लाभ है जो हमारे हृदय से द्वेष को भी कम नहीं करे। तपस्या का उद्देश्य होना चाहिए हृदय की शुद्धता, और हृदय की शुद्धता का अर्थ है हमारे हृदय से काम, लोभ, द्वेष ये सारे निकल जाए, ये सच्ची तपस्या है। लेकिन जैसे ही तपस्या समाप्त हुई है हिरण्यकश्यप की, उसके मन में क्या आया, अब विष्णु को नहीं छोड़ूंगा, उसने मेरे भाई को मारा था, अर्थात इतने वर्षों तक भी वो उस द्वेष को बनाए हुए है। हम भी देखते हैं कभी कभी इस जगत में ऐसा होता है कि व्यक्ति कभी किसी के साथ गलत कर देता है तो व्यक्ति बरसों तक उसको बनाए रखता है कि उसने ऐसा किया था मेरे साथ। यही हिरण्यकश्यप की मानसिकता कि इतने वर्ष तपस्या करके भी वो ये क्या बनाए रखा है, विष्णु ने मेरे भाई को मारा था तो इसीलिए मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। कोई लाभ नहीं तपस्या का। अगर हम लोग भक्ति कर रहे हैं, भक्ति मार्ग में हैं, जप कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, नियम का पालन कर रहे हैं, लेकिन हृदय से वो द्वेष नहीं जा रहा, वो भावनाएं नहीं जा रही, कोई लाभ नहीं है ऐसी भक्ति का। कृष्ण प्रसन्न नहीं होंगे। हो सकता है जैसे हिरण्यकश्यप को सारे ब्रह्मांड का स्वामी बन गया, बनने का अवसर मिला, तीनों लोकों को जीत लिया उसने, देवताओं को भगा दिया, लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं हुए, लाभ नहीं हुआ। इसीलिए सच्चा लाभ हमारी तपस्या, हमारी भक्ति का यह है हृदय से द्वेष को निकालना। जैसे एक बार वो कथा बताई थी कि एक व्यक्ति की, बहुत बड़े व्यक्ति थे, धनवान व्यक्ति थे, और फिर उन्होंने सब कुछ त्याग दिया कि अब मैं भिक्षुक बनूंगा वृंदावन में जाकर इत्यादि। और उस समय जब वो धन कमाते थे तो उनका एक प्रतिद्वंदी था, वो भी बहुत बड़ा धनवान था, तो वो दान दिया करता था। तो ये व्यक्ति हरेक के पास मांगने जाते थे लेकिन उसके पास नहीं जाते थे क्योंकि इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया कि मैंने सब कुछ धन छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, मैं बाकी लोगों से भिक्षा मांगूंगा लेकिन उससे नहीं मांगूंगा। क्यों? द्वेष नहीं गया। इसने मेरा, जब मैं व्यापार करता था तो बड़ा मेरे व्यापार में नुकसान कराया था या मेरा बिजनेस छीन लिया था, जो भी, तो उसके पास नहीं जाऊंगा। तो ऐसे काफी दिन होने के बाद एक दिन उनके मन में आया कि नहीं, अगर मुझे सही दृष्टि में वैराग्य लाना है तो मुझे इससे जाकर भिक्षा मांगनी चाहिए। तो एक दिन वो व्यक्ति भिखारियों को दान दे रहे थे और लाइन लगी हुई थी, तो ये भी जाके लाइन में लगे भिक्षा मांगने के लिए। और जब उस व्यक्ति ने देखा कि अरे ये व्यक्ति, वो तो जानते थे कि मेरा प्रतिद्वंदी था, इतना बड़ा व्यक्ति था, और ये व्यक्ति लाइन में खड़ा होकर मेरे से भिक्षा लेने के लिए आया है, तो उसका भी हृदय पिघल गया, तो उसने भी उनका स्वागत किया ही है, तो दोनों के हृदय का द्वेष समाप्त हो गया। ये भी व्यक्ति द्वेष करके बैठा था और ये भी। तो इसीलिए हमारी भक्ति, हमारी तपस्या का पूर्ण लाभ तब है जब हृदय से इस द्वेष की भावना को निकाल दें। हिरण्यकश्यपों की तरह नहीं बने कि बहुत कड़ी तपस्या कर ली, ऐसी तपस्या जिसका गुणगान ब्रह्मा जी ने किया। पिछले अध्याय में ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुमने ऐसी तपस्या की है कि ये जो भृगु मुनि है मेरे साथ आए हैं, ये कई वर्षों तक बिना जल लिए रह सकते हैं लेकिन ये भी ऐसी तपस्या नहीं कर सकते जैसे तुमने की। तो इतनी तपस्या जिसका गुणगान ब्रह्मा जी ने किया हो, लाभ क्या है? जैसे ही ब्रह्मा जी गए तुरंत विष्णु को नहीं छोड़ूंगा, द्वेष समाप्त नहीं हुआ। इसी तरह हो सकता है हमारी भक्ति, जब हम भक्ति करते हैं तो उसका गुणगान बहुत से लोग करें, और ये होगा। जब हम लोग समाज में रहकर कुछ भक्ति, कुछ भगवान की भक्ति, भगवान का विषय करना चाहते हैं, थोड़ी सेवा करना चाहते हैं, तो क्योंकि भगवान से जुड़ते हैं और भगवान का एक ऐश्वर्य है यश, तो वो यश हमें प्राप्त होता है भगवान का, क्योंकि हम भगवान से जुड़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा अंश भगवान का हमें उस यश का प्राप्त होता है। और जब वो यश हमें मिल जाता है, अर्थात लोग हमारी बहुत प्रशंसा करते हैं, प्रभु जी आपने ये किया वो किया, आप बहुत अच्छा प्रवचन देते हैं, आप प्रचार करते हैं, आप ये सब करते हैं, तो मानना नहीं चाहिए उस तरह की ब्रह्मा जी गुणगान कर रहे, लेकिन ब्रह्मा जी जानते हैं कि इसका नुकसान होने वाला। तो इसलिए केवल किसी की प्रसिद्धि या केवल किसी की प्रशंसा लेकर हमें भक्ति में सफलता नहीं मिलती है। भक्ति में सफलता है कि हमारे हृदय से द्वेष गया या नहीं, हमारे हृदय से भौतिक कामनाएं गई या नहीं। अगर नहीं, श्रम एव ही केवलम, भागवत कहता है कि फिर केवल श्रम किया आपने, भले भक्ति की, बहुत बड़ा बड़ा कार्य किया, मंदिर बनाए, प्रचार किया, भक्त बनाए, आप बहुत बड़े प्रचारक गुरु हो गए, श्रम एव ही केवलम, केवल श्रम है। क्यों? न उत्पादयेत यदि रतिम, भागवत कहता है कि अगर रति उत्पन्न नहीं हुई, प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ भगवान के प्रति, द्वेष भरा रहा, इस व्यक्ति को मैं ये करके दिखाऊंगा। कभी कभी हम लोग भक्ति में बड़ी अच्छी चीजें करते हैं दूसरों को दिखाने के लिए, अब मैं ये करके दिखाऊंगा, अब मैं इतना प्रचार करके दिखाऊंगा, अब मैं भक्त बनाकर दिखाऊंगा, कोई लाभ नहीं। आप कर सकते हैं, हो सकता है क्योंकि आप जप कर रहे हैं तो भगवान की कृपा से आपको थोड़ा बहुत वो प्रसिद्धि मिल जाए, हो सकता है कि आप कोई भक्त बना लें, हो सकता है आप किसी स्थान को बहुत अच्छा कर लें, इत्यादि इत्यादि, कोई लाभ नहीं। श्रम एव ही केवलम, भागवत कहता है केवल श्रम है, बेकार की मेहनत है, कुछ नहीं और। क्यों? कृष्ण को प्राप्त नहीं किया। क्योंकि भक्त किसे कहते हैं, वैष्णव किसे कहते हैं? जिसका धन कृष्ण है उसे वैष्णव कहा जाता है। वैष्णव किसी अमीर व्यक्ति को नहीं कहा जाता जिसके पास बहुत पैसा है, वैष्णव किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं कहा जाता जो बहुत बड़ा राजनेता है, वैष्णव किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं कहा जाता जिसके पास बड़ा मान सम्मान है, वैष्णव उसको कहा जाता है जिसका धन कृष्ण है। तो इसीलिए अगर हम इस द्वेष को नहीं निकालें और बहुत कड़ी तपस्या, बहुत भक्ति करें, कोई लाभ नहीं। तो हिरण्यकश्यपु ये सब करके, शक्ति प्राप्त करके, तपस्या करके, अब विष्णु को मारने निकला, तो इसलिए उसने सारी जगह आतंक मचा दिया, देवताओं तक को नहीं छोड़ा, सारी जगहों पर उसने अपनी शक्ति के बल पर आतंक मचाना शुरू किया, यज्ञ बंद करो, ये सब करो, जो भी कार्य हो रहे थे सब बंद करा दिए। और वो तो ये कहने लगा कि अरे तुम ये किसको अर्पण करते हो, भगवान भगवान मैं हूं, मुझे अर्पण करो, तुम्हें पूजा करनी है मेरी पूजा करो, मैं भगवान। तो हिरण्यकश्यपु उस समय विष्णु के स्थान पर हो गया। देखिए जब तपस्या कर रहा था तब उसकी इच्छा ब्रह्मा बनने की थी, शक्ति आने के बाद अब विष्णु बन गया। उसने कहा मेरी तपस्या करो, मेरी पूजा करो, और लोग करने लगे क्योंकि डरते थे, और जितने देवता हैं वो कांपने लगे, देवता उसकी सेवा करने लगे। ऐसा वर्णन है कि केवल ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु, इन तीन जो लोगों को छोड़कर सारे लोग, जितने अन्य देवता हैं, ये सब इनकी सेवा करने लगे। नारद मुनि कहते हैं युधिष्ठिर महाराज को मैं खुद भी, इस श्लोक में नारद मुनि भी, इतने बड़े भक्त हैं नारद मुनि, उनको क्या होने वाला, क्यों वो हिरण्यकश्यपु की सेवा कर रहे हैं, क्या डर गए? तो प्रभुपाद लिखते हैं कि कभी कभी भक्तों को भी ऐसा करना पड़ता है समाज में ऐसी व्यवस्था के कारण। तो हिरण्यकश्यपु की शक्ति उस समय इतनी बढ़ गई थी, वेण जब राज्य कर रहा था तो वेण की शक्ति थी, लेकिन वेण फिर भी भृगु जैसे मुनियों से घबराता था। हिरण्यकश्यपु तो इतना बड़ा आतंकवादी हो गया कि ऋषि मुनियों से भी नहीं घबराता था, क्योंकि उसको वरदान था, कोई कुछ कर ही नहीं सकता, न भृगु कुछ कर सकते हैं न देवता कुछ कर सकते हैं। तो वेण कम से कम वेण हिरण्यकश्यपु से उस दृष्टि में अच्छा था कि भृगु आदि मुनियों से घबराता था ये लोग, और उन्होंने मार डाला। लेकिन हिरण्यकश्यपु को पता था ये लोग कुछ नहीं कर सकते, इसलिए किसी की चिंता नहीं, कोई ऋषि नहीं, कोई देवता नहीं। देवता भागने लगे अपने स्थान को छोड़कर, और सेवा करना पड़ता था देवताओं को जैसे। और हिरण्यकश्यपु ने हटा दिया इंद्र को उसके राज्य से और स्वर्ग पर राज्य करने लगा, बैठ गया उसके सिंहासन पर, कुछ नहीं कर पाए इंद्र उनका। प्रभुपाद एक बहुत सुंदर बात लिखते हैं, प्रभुपाद कहते हैं कि इस जगत में कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहां कष्ट ना हो। इंद्र को भी कष्ट है, देवताओं को भी कष्ट होता है, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि इस जगत में कोई शांति से रह सकता। देवताओं की शांति को भी भंग कर देते हैं असुर जाकर, स्वर्ग लोक में भी। तो इसलिए ये जगत ही ऐसा है जहां शांति है ही नहीं, इसीलिए हमें यहां से बाहर जाने का ही प्रयास करना चाहिए। इस जगत में बने रहने का जो भी प्रयास करते हैं उनके सारे प्रयास विफल होते हैं। हिरण्यकश्यपु ने कर लिया कि मैं ऐसे नहीं मरूं, वैसे नहीं मरूं, मैं बना रहूं, लेकिन मार दिया भगवान ने, क्योंकि ये जगत है ही ऐसा। तो हिरण्यकश्यपु ने सारी शक्ति अर्जित कर ली, शक्तिवान हो गया, लेकिन इस अध्याय में कहा गया है कि उसको संतुष्टि नहीं थी। इतनी शक्ति होने पर कि देवताओं को भगा दिया उसने उनके स्थान से, खुद देवता बनकर बैठ गया, लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं है। और क्यों? क्योंकि उसने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं किया। तो भागवत के इस अध्याय में बड़ा महत्वपूर्ण चीज यह है कि व्यक्ति सारे ब्रह्मांड की शक्ति को प्राप्त कर ले, सारे ब्रह्मांड को जीत ले, देवताओं को जीत ले, लेकिन अगर अपनी इंद्रियों को नहीं जीतेगा तो फिर कोई लाभ नहीं, संतुष्टि नहीं है। प्रहलाद महाराज आगे चलकर यही बात समझाएंगे हिरण्यकश्यपु को कि तुमने क्या क्या इतना बड़ा ले लिया, अपनी इंद्रियों को तो तुम जीत नहीं पाए हो, क्या फायदा हुआ आपका। तो इसलिए इंद्रियों को वो जीत नहीं पाया, इसलिए संतुष्ट नहीं रहा। तो खैर ऐसे 20 श्लोक तक वर्णन किया गया कि बहुत कष्ट। फिर 21वें श्लोक से 29वें श्लोक तक, जैसे श्लोक में हम लोग देख रहे हैं कि सारे देवता बड़े दुखी हो गए, तो देवता 29वें श्लोक तक वर्णन किया कैसे भगवान के पास गए और भगवान से उन्होंने प्रार्थना की। तो देवताओं ने देखा अब तो कोई कुछ नहीं, पहले तो ब्रह्मा जी के पास गए थे, ब्रह्मा जी को कहा था, लेकिन ब्रह्मा जी ने तो उल्टा और नुकसान करा दिया। हम तो पहले गए थे कि ये तपस्या कर रहा है, इसको बंद कराइए, और उल्टा ब्रह्मा जी जाकर वरदान देकर आ गए, तो अब ब्रह्मा जी के पास जाने का क्या फायदा। अब फिर जाएंगे तो पता नहीं और क्या देकर आ जाएंगे, इसीलिए अभी एक ही आश्रय भगवान, वही कुछ कर सकते हैं। तो देवताओं भी समझ गए। तो वैसे देवताओं ने नियम का पालन किया था, वो ठीक था। नियम ये था कि देवताओं को कुछ तकलीफ है तो ब्रह्मा जी के पास जाए, लेकिन जब देखा कि अब ब्रह्मा की भी कोई शक्ति नहीं रही, ये तो हिरण्यकश्यपु इतना बड़ा आतंकवादी हो गया, तो फिर सब भगवान के पास गए। भगवान के पास जाकर उन्होंने बहुत सुंदर प्रार्थनाएं भगवान को अर्पण की। भगवान वहीं से, जैसे ऐसे वर्णन किया गया है कि वे लोग उस दिशा में जहां भगवान है वो उस दिशा की ओर देखकर प्रार्थनाएं अर्पण करने लगे। भगवान तो दिखे नहीं इनको, क्योंकि इतना सरल नहीं है भगवान को देखना। तो उन्होंने प्रार्थनाएं अर्पण की कि आप हमारी रक्षा कीजिए, इतना ये हिरण्यकश्यपु आतंक मचा रहा है। तो उस समय भगवान ने उन्हें बताया, तो उन्होंने भगवान की वाणी को सुना। तो उन्होंने भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, इसका मैं वध करूंगा, तो ये अभी जितना शक्तिशाली है इसको शक्ति का उपयोग करने दो, लेकिन थोड़े समय में वध करूंगा। और कब करूंगा? तब भगवान कहते कि जब ये अपने पुत्र प्रहलाद के प्रति अपराध करेगा। बहुत सुंदर वर्णन भगवान कहते कि जब ये प्रहलाद के प्रति, क्योंकि वो एक वैष्णव है, जब ये उसके प्रति अपराध करेगा तब मैं उसका वध करूंगा। तो इस तरह से भगवान एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं। हाँ, यहां भगवान कहते हैं श्लोक में 28 नंबर में, जब हिरण्यकश्यपु अपने ही पुत्र परम भक्त प्रहलाद को सताएगा जो अत्यंत शांत गंभीर है, तो मैं ब्रह्मा के समस्त वरों के होते हुए भी उसका तुरंत ही वध कर दूंगा। तो भगवान कहते हैं ब्रह्मा ने वर दिया, चिंता मत करो, क्योंकि देवताओं को चिंता थी कि आप मारेंगे कैसे, ब्रह्मा ने इतने सारे वर दे दिए, ऐसे नहीं वैसे नहीं, प्राणी से नहीं, पशु से नहीं, मनुष्य से नहीं, होगा कैसे। भगवान ने कहा उसकी चिंता मत करो, ब्रह्मा के सारे वरों को वैसे ही रखते हुए भी उसको मैं मार दूंगा, लेकिन कब, जब प्रहलाद के प्रति अपराध करेगा। प्रभुपाद समझाते तात्पर्य में कि सारे अपराधों में से वैष्णव अपराध बहुत खतरनाक है। तो हिरण्यकश्यपु बाकी सब चीजें कर रहा है, भगवान सहन कर रहे हैं, लेकिन जब प्रहलाद के प्रति अपराध किया, भगवान कहते तब मैं सहन नहीं करूंगा और तब मैं उसका वध करूंगा। इसीलिए हमें भक्ति मार्ग में इस चीज को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। हम सोच सकते हैं कि हम बड़े प्रचारक हो गए हैं, हम बड़े व्यवस्थापक हो गए हैं, हम बड़े गुरु हो गए हैं, ब्रह्मचारी सन्यासी हो गए हैं, लेकिन अगर हम वैष्णव अपराध करेंगे तो चाहे किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, पतन निश्चित है, हमारा पतन होना अवश्यंभावी है। इसीलिए बहुत संभालना चाहिए कि हम भक्ति में रहते हुए वैष्णव अपराधों को ना करें। तो इस तरह भगवान ने सांत्वना दी देवताओं को, देवता संतुष्ट हो गए। तो जब अब प्रहलाद का वर्णन कर दिया नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज को कि जब प्रहलाद को कष्ट देगा, तो अब वो आगे के श्लोकों में, श्लोक नंबर 30 से लेकर करीब 12-13 श्लोक आगे तक, अब वो वर्णन करते हैं प्रहलाद के गुणों का। क्योंकि अब उन्होंने कह दिया कि प्रहलाद को, तो प्रहलाद कौन है, मानो युधिष्ठिर महाराज के मन में प्रश्न आ गया कि इतना कौन सा श्रेष्ठ हो गया प्रहलाद कि उसके लिए भगवान है, तो क्या गुण थे। तो फिर गुणों का वर्णन करना प्रारंभ करते हैं। तो बहुत से गुणों को कहते हैं, इस अध्याय में प्रहलाद महाराज के गुण दिए गए हैं। हमारे पास इतना समय नहीं कि आज एक एक गुण की चर्चा विस्तार से की जाए, इससे तो एक पूरा 2-3 दिन इस पर चर्चा हो सकती है, इतने गुणों को कहा है। तो उनके गुणों में कहते हुए प्रमुख गुण को कहते हैं, वो कहते हैं वासुदेव भगवती यस्य नैसर्गिकी रति ही। प्रहलाद के अन्य गुण तो हैं, उन्होंने कहा, लेकिन प्रमुख गुण है कि वो भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के भक्त थे। वासुदेवे भगवती यस्य नैसर्गिकी रति, स्वाभाविक प्रेम था, स्वाभाविक रति थी उनमें श्री कृष्ण के प्रति। जैसे हम सब में भोग करने की, आनंद लेने की, इस जगत के कुछ भौतिक चीजों को पाने की स्वाभाविक रति होती है, हमें कोई सिखाता नहीं है। हम लोग छोटे से बड़े होते हैं तो कोई सिखाता नहीं है कि ऐसे आनंद लेना चाहिए, करना चाहिए, स्वाभाविक है, हम लोग उस आनंद के पीछे भागते हैं। ये भूल जाते हैं कि जिस तरह दुख नहीं रहते उस तरह सुख भी नहीं रहते। आप देखिए, कभी आप दुखी होते हैं तो लोग आके आपको कह सकते हैं चिंता मत करो, ये समय चला जाएगा, थोड़ा समय सहन करो, चला जाएगा। लेकिन क्या कभी आप सुखी होते हैं तो कोई आकर आपको कहता है चिंता मत करो, ये समय चला जाएगा। कोई नहीं कहता, दुख में कहते हैं चला जाएगा, चला, सुख में कोई चाहते ही नहीं है कि ये जाए, जबकि जानते हैं, जानना चाहिए कि जैसे दुख चला जाएगा ऐसे सुख भी चला जाएगा, थोड़े समय के लिए है, जितना समय आपके कर्म के अनुसार है, फिर चला जाएगा, लेकिन कोई आकर नहीं कहता। आप किसी को कहो आज मैं बहुत खुश हूं, आज कई वर्षों के बाद मेरे घर में संतान उत्पन्न हुई है, और वो व्यक्ति कहे चिंता मत करो, ये समय भी चला जाएगा, ये सुख भी चला जाएगा, आप उसको लेकर एकदम क्रोध में हो जाओगे, कैसे ये कह सकते हो। जैसे कहानी राजा की बताई जाती है, दक्षिण भारत में एक मंत्री थे बड़े प्रसिद्ध राजा के, तो बड़े बुद्धिमान थे। तो एक समय राजा के घर में बहुत समय बाद संतान उत्पन्न हुई, तो स्वाभाविक है राजा बड़ा खुश था, बड़ा प्रसन्न था। तो राजा ने मंत्री से कहा कि आज मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं, तुम बताओ मेरी ये प्रसन्नता की तुलना किससे की जा सकती, इतना मैं प्रसन्न हूं, इसकी तुलना नहीं की जा सकती, तो तुम बताओ मेरी कैसी प्रसन्नता है। तो गोपाल भान ये जो मंत्री थे उन्होंने कहा कि महाराज आपकी जो प्रसन्नता है वो केवल इतनी है कि जितने व्यक्ति को शौच करके आने के बाद होती है, बस इतनी प्रसन्नता है। यानी अब सुबह सुबह शौच के लिए जाते हैं, बस उस शौच करके जब आते, जब व्यक्ति को अच्छा लगता है उतनी प्रसन्नता। अभी राजा तो आप सोचिए, कई समय बाद, काफी सालों के बाद उसको पुत्र हुआ है, उसकी प्रसन्नता, और ये कह रहे कि कैसी प्रसन्नता है, वो टॉयलेट करके आते बस वही प्रसन्नता, शौच करके आ जाओ वही प्रसन्नता। राजा ने कहा इसको समझाओ नहीं तो तुम्हारा गला काट दूंगा। ने कहा समय आने पर समझाऊंगा, चिंता मत कीजिए। तो थोड़े समय बाद ऐसे चल रहा था राज्य, अचानक एक दिन रात्रि का समय था, प्रायः सुबह होने वाली थी। गोपाल भान आए महाराज के कक्ष में, जोर से उठाया, महाराज उठिए उठिए। बोले क्या हो गया, क्या हो? अरे शत्रु ने आक्रमण कर दिया महाराज राज्य पर, शत्रु ने, सैनिक कहां है, सेना सब भाग गए, आपके सैनिक सेनापति भाग गया। क्या कह रहे हो? हाँ, अब आप अपनी जान बचाकर भागिए, नहीं तो शत्रु आ रहा है पीछे। चलो ठीक है, तो भागे वैसे ही तुरंत, शत्रु पीछे पड़ा और चल रहे और गोपाल भान कह रहे महाराज रुकिए नहीं, मुझे घोड़ों की आवाज सुनाई दे रही है, शत्रु बस आ ही रहा है पकड़ने के लिए, भागिए। भाग रहे। सुबह का समय हो गया था, अब राजा को शौच में जाना था। अब गोपाल भान, महाराज भागिए, पीछे शत्रु है। उसने कहा नहीं, तो खैर नदी के किनारे पहुंचे। राजा ने कहा गोपाल भान थोड़ा मैं जरा जाकर आता हूं फिर चलें। अरे महाराज शत्रु पीछे तलवार से काट देगा आप अगर शौच करने बैठोगे, तो भागिए अभी, तो जान बचानी है। तो जो जबरदस्ती बोट में बिठाया, बोट बार बार राजा कह रहे गोपाल भान थोड़ा महाराज जान बचानी है। नदी के बीच में पहुंच गए, अब उससे कंट्रोल नहीं हो रहा है राजा से। तो राजा ने कहा गोपाल भान नौका को साइड में लगाओ। गोपाल भान ने कहा महाराज शत्रु है, अरे लगाओ तुम वहां पर, मेरा आदेश है। तो खैर लगाया गया, अब महाराज उतर के जा रहे हैं। तो गोपाल भान ने कहा महाराज शत्रु है, जान से मार देगा। बोले जान चली जाए कोई बात नहीं। तो महाराज गए और शौच करके आए और फिर आकर उन्हें बड़ा अच्छा लगा। तो उस समय राज गोपाल भान ने पूछा महाराज कैसा लग रहा आपको? तो बोले हाँ अब ठीक है, अब बताओ कहाँ चलना है? बोले कहीं नहीं चलना है। अरे कोई शत्रु नहीं है। अरे फिर? तो बोले देखिए ये जो शौच करने का सुख है, इस सुख के लिए आप अपनी जान देने के लिए तैयार थे ना? आपको पता था कि शत्रु है पीछे, लेकिन वो जान से मार देगा, लेकिन आपने कहा जान चली जाए, लेकिन ये चाहिए मुझे। तो यही तो मैंने कहा था कि जो आपको संतान हुई है ये केवल वही सुख है, बस आदमी को शौच के बाद जो सुख मिलता है वो सुख है। तो इसीलिए जो सुख और दुख हम लोग प्राप्त करने का प्रयास करते रहते हैं, तो जैसे हमारी स्वाभाविक रति है सुख में, कोई नहीं कहता कि सुख चला जाएगा, ना हम चाहते हैं ना हम किसी को कहते हैं कि अगर किसी के जीवन में सुख आए तो हम तो ये कहते हैं कि बना रहे, हमारे जीवन में आए तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि जब ये जाएगा कितना दुख देगा। चित्रकेतु महाराज पुत्र आया, बहुत प्रसन्न हो गए, उत्सव मनाया, भूल गए अपने राजकाज को, हमेशा उस पत्नी के साथ रहते थे जिसने जन्म दिया, लेकिन जब वही पुत्र, भूल गए कि वही पुत्र, उसको कहा था हर्ष शोक ये तुम्हारे हर्ष और शोक का कारण होगा, लेकिन महाराज भूल गए, और जब मर गया तो हाय हाय भगवान विधाता ने ऐसा क्यों किया इत्यादि। तो इसीलिए नैसर्गिकी, और प्रहलाद महाराज में क्या रति थी? भगवान के प्रति, वासुदेव भगवती यस्य नैसर्गिकी। तो जैसा स्वाभाविक आकर्षण हमारा भोगों के प्रति होता है, आनंद लेने के प्रति होता है, प्रहलाद महाराज का स्वाभाविक आकर्षण श्री कृष्ण के प्रति था, ऐसे वो भक्त थे। तो इसको कहने के बाद फिर उनके अन्य गुणों को कहना शुरू करते हैं। पहला गुण वो कहते हैं कि महत उपासक थे। कई गुणों को उन्होंने कहा, इसलिए हमने कहा समय नहीं है प्रहलाद महाराज के इतने सुंदर गुणों को कहने का, आगे कभी अवसर मिला तो उन गुणों का वर्णन करेंगे। तो वो कहते हैं कि ये महद उपासक है। महत मतलब भगवान के भक्त, उपासक यानी जो उनकी पूजा करते हैं। वैसे जो उपासना शब्द है या उपासक शब्द है, इसका इसके दो अर्थ होते हैं। एक साधारण अर्थ जो हम लोग जानते हैं, उपासना करना, देवताओं के उपासक, भगवान के उपासक, भक्तों के उपासक जो पूजा करते हैं। लेकिन दूसरा अर्थ उपासक का होता है जो पास बैठता है, उपवास जैसे हम लोग करते हैं। तो उपासक मतलब जो पास बैठता है। तो यह महद उपासक मतलब वो सदैव भक्तों के पास बैठा करते थे। ये स्वाभाविक है, जिस व्यक्ति को जिस चीज में रुचि होती है वो उसके पास ही बैठेगा। शराब पीने वाला कुछ भी हो, कहीं ना कहीं घूम घाम के वहीं चला जाएगा जहां चार लोग शराब पी रहे हैं। जुआ खेलने वाला वहीं चला जाएगा। धन कमाने वाला व्यापारी जो होते हैं उनको आपस में आनंद आता है, इसीलिए इतनी बड़ी बड़ी वो बनाए जाते हैं ना संस्थाएं, चेंबर ऑफ कॉमर्स वगैरह की, आप साथ में आइए। प्रभुपाद कहते थे कि इतने चेंबर ऑफ कॉमर्स बनाए जाते हैं कि सब साथ में आए और चर्चा करें कैसे व्यापार बढ़ाना है। और इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं हमने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस बनाई है कि सब लोग साथ में आए और चर्चा करें कैसे कृष्ण भक्ति को बढ़ाना है, ये हमारा बिजनेस है। तो प्रहलाद महाराज, तो इनके एक ये गुण था, महद उपासक थे, हमेशा भक्तों के साथ में रहते, प्रयास करते थे, या कहना चाहिए भक्तों के उपासक थे, भक्तों की उपासना किया करते थे। तो इस तरह से ये उनके गुण। फिर आगे उनके गुणों की, बहुत सारे गुणों की चर्चा है। ब्राह्मण्यशील संपन्न, सत्य संधो, जितेन्द्रिय, आत्मवत, सर्वभूतानाम सुहृद, बहुत सारे वर्णन करते हैं इनके गुणों को, कैसे गुण थे। तो जैसे ब्राह्मण्य, ब्राह्मण्य मतलब उनकी रुचि ब्रह्म वस्तु में थी, या ब्रह्म को वो जानते थे। दो चीजें होती हैं, ब्रह्म और माया। हमारी रुचि किसमें है? माया, स्वाभाविक है, ब्रह्म में नहीं है, कृष्ण में नहीं है। तो ब्रह्म और माया, तो जो ब्रह्म में रुचि रखता है उसको ब्रह्मवादी या ब्रह्ममय कहते हैं, और जो माया में रुचि रखता है उसको मायावी या मायावादी कहते हैं। मायावादी मतलब, वैसे मायावादी शब्द का अर्थ ये होता है कि वो लोग जो भगवान के शरीर को माया से बना हुआ मानते हैं उनको मायावादी कहते हैं। लेकिन वाद मतलब कहना, तो जो केवल माया की बातें करते रहें वो मायावादी। वाद यानी बोलना, तो जो हमेशा माया के विषय में बोलते रहते हैं वो मायावादी है। तो इसीलिए ब्रह्मण्य प्रहलाद महाराज हमेशा कृष्ण का विषय बोलते थे, अपने मित्रों के साथ भी हमेशा कृष्ण का, मित्रों के साथ क्या, हिरण्यकशिपु, असुर वर्य, उसको भी वो भगवान का विषय बोला करते थे। आगे वर्णन आएगा जब हिरण्यकशिपु ने बुलाया, क्या क्या सीखा तुमने, क्या विष्णु विष्णु कर रहे, बताओ सबसे अच्छी चीज क्या है जगत की। तो वो कहते यही अच्छी चीज है, तत्साधु मन्य असुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न ध्यान असद्ग्रहान हित्वात पातं गृहंदकूपं वनं गतो यत् हरिमाश्रयेत। भगवान हरि का आश्रय लेना चाहिए। तो इसीलिए उनका पहला गुण था ब्राह्मण्य, शील संपन्न, सारे गुण थे। स्वाभाविक है जो भक्ति करते हैं भगवान की, उनके अंदर सारे गुण अपने आप आ जाते हैं। यस्यास्ति भक्तिर् भगवत किंचन सर्वे गुण सत्र समासते सुरा, तो उनके अंदर सारे गुण आ जाते हैं। तो शील संपन्न, सत्य संधो, हमेशा सत्य के मार्ग पर रहे, सत्य से जुड़े रहे। जितेन्द्रिय, अपनी इंद्रियों को जीत लिया था उन्होंने, और ये अंतर था हिरण्यकश्यपु और प्रहलाद। हिरण्यकश्यपु इतने हजारों वर्षों की तपस्या के बाद भी इंद्रियों को जीत नहीं पाया, प्रहलाद महाराज 5 वर्ष की भक्ति से अपनी इंद्रियों को जीत सके थे। तो जितेन्द्रिय थे। तो ऐसे कई गुणों को वर्णन करते हैं कि किस तरह आत्मवत, सबको अपने समान मानते थे, सबके मित्र थे, सुहृद थे, और साथ ही साथ गुरु गुरु ईश्वर भावना, तो अपने जो गुरु थे, अपने जो वरिष्ठ थे, उनको भगवान की तरह आदर देते थे। अपने जो साथी थे उनके साथ मित्रता का भाव रखते थे, उनसे जो नीचे थे उनके ऊपर कृपा रखते थे। तो ऐसे प्रहलाद महाराज के गुणों का वर्णन किया गया। और फिर आगे प्रहलाद महाराज की बातें कहते हुए नारद मुनि कहते, कैसे रहते थे, कभी अचानक हंसने लगते, कभी रोने लगते थे, कभी कीर्तन करने लगते। और उसका कारण क्या था, नारद मुनि कहते जब वो भगवान को देखते थे, अर्थात इतने ऊंचे स्तर पर थे, भगवान को देखा करते थे, तो जब वो भगवान को देखते थे तो जोर से चिल्लाते थे भगवान का नाम और कीर्तन करने लगते थे। और कभी कभी भगवान के हाथों का स्पर्श का अनुभव करते थे तो एकदम शांत हो जाते थे। ये प्रहलाद महाराज के गुण है, तो एकदम शांत हो जाते थे, कुछ बोलते नहीं थे। तो ऐसे, और बचपन से कभी नारद मुनि कहते कि उनको खेल में रुचि नहीं थी, उनके मित्र बुलाया करते थे आओ प्रहलाद खेलें, लेकिन प्रहलाद को कोई रुचि नहीं थी खेलने में, केवल कृष्ण में रुचि थी। तो ऐसे प्रहलाद के गुणों का वर्णन उन्होंने किया कि किस तरह उनके अंदर बहुत सारे गुण थे। और फिर अंतिम दो श्लोकों में इस अध्याय के युधिष्ठिर महाराज दो तीन श्लोकों में प्रश्न करते हैं। तो जब युधिष्ठिर महाराज ने सुना कि इतना गुणवान बच्चा था तो फिर हिरण्यकश्यपु ने मारा क्यों, तो इसीलिए उन्होंने नारद मुनि से प्रश्न किया कि साधारणतः जो माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चे के प्रति स्वाभाविक प्रेम करते हैं, बच्चा कैसा भी हो लेकिन वो प्रेम करते हैं, और यहां तो ये बच्चा इतना गुणवान, और केवल गुणवान नहीं माता पिता का आज्ञाकारी, तो फिर हिरण्यकश्यपु ने क्यों मारा, ऐसा क्या हो गया कि उसको मारना पड़ा। तो तब अगले अध्याय में आगे की कथा को प्रहलाद महाराज की आगे की कथा को नारद मुनि कहेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। किसी का कोई